मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे भारत में जो जनसंख्या की स्थिति है उसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी सूचनाओं और समाचारों को जान लेते हैं। पहली बात तो यह जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि हम लोगों ने, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस ने 100 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं करेंट अफेयर्स के, यानी कि पिछले लगभग 13-14 महीने में जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जिनके अभी अक्टूबर प्री में जो एग्जाम होना है उसमें पूछे जाने की, आप यूं कह लीजिए, कंपेरेटिवली अधिक संभावना है, उनके आधार पर 100 टॉपिक्स का चयन किया है और बकायदे इसका यूट्यूब पर लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबको चाहिए कि समय निकाल करके आप उस लेक्चर को सुने और इसी पर बेस्ड, यानी कि ये 100 जो टॉपिक्स हैं इन्हीं पर बेस्ड 200 क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप के बना करके आपको उपलब्ध कराए गए हैं। हाँ, इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो 200 प्रश्न हैं ये केवल 100 टॉपिक्स पर ही बेस्ड नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ऐसे भी आपको टॉपिक मिलेंगे जो इस 100 में शामिल नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टि से थोड़े से महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहे थे, इसलिए उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। खासकर यहां मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, उन्होंने कुछ मेल लिख करके पूछा है कि देखिए, इससे सवाल नहीं है कि आप 2000 अभी जो 21 का एग्जाम हो रहा है इसमें बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, आप 2022 के एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हैं और आपने एक बार अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो आपको चाहिए कि आप इसके जो मॉक टेस्ट हैं उन्हें सॉल्व करें। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं 200 क्वेश्चंस, इनका फॉर्मेट कुछ ऐसा रखा गया है कि इससे आपकी तैयारी भी हो सके। नो डाउट कि इससे आपका परीक्षण तो हो ही सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, लेकिन जो ऑप्शंस मैंने तैयार किए हैं, जी हाँ, मैंने खुद ही ये क्वेश्चंस बनाए हैं, वो इस आधार पर तैयार किए हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में मौजूद रह सकें, ताकि अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है तो आप उनके उत्तर दे सके। तो ये केवल परीक्षण के लिए ही नहीं है बल्कि आपके प्रिपरेशन के लिए भी है। तो आपको चाहिए कि आप इन्हें बहुत इत्मीनान से सुने, इत्मीनान से पढ़ें और एक बार ही सुनकर और पढ़कर न छोड़ दें। खासकर सुनकर तो भले ही आप एक बार में छोड़ दें, लेकिन जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें और उनमें जो फैक्ट्स हैं बेहतर होगा कि उन्हें रिवाइज करके थोड़ा सा याद रखने की भी कोशिश से करें। एक जो दूसरी सूचना है फ्रेंड्स, वो है कि अभी जो अक्टूबर में आपके प्री एग्जामिनेशन होने हैं उसके लिए आप सबने अपने अपने सेंटर दिए हुए हैं, लेकिन आप अपने सेंटर को अगर बदलना चाहते हैं तो बकायदे उसके लिए जो विंडो है यूपीएससी की वो ओपन कर दी गई है। 19 जुलाई तक ये ओपन रहेगी, आप जाकर के बकायदे वहाँ अपने सेंटर को अपडेट कर सकते हैं। यूपीएससी की जो वेबसाइट है वो आप जानते हैं, upscionline.nic, ये दो आप सबके लिए सूचनाएं थी। दोस्तों, अब मैं दो घटनाओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। कल शेखर गुप्ता जी का मैंने आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था, याद करने की कोशिश कीजिए। कल मैंने जानबूझकर के इसकी चर्चा नहीं की थी, सच बताऊं तो, इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको वो क्लिपिंग्स देखने के बाद ये लगा होगा कि नहीं, शेखर गुप्ता जी का जो ये लेख है ये मुझे पढ़ना चाहिए। अब आप देखिए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद को बताइए। अगर आपने छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया, आपको क्यों महत्वपूर्ण नहीं लगा, और अगर आपने उसे पढ़ा तो आपको क्यों महत्वपूर्ण लगा, और फिर अगर आपने पढ़ा आपको महत्वपूर्ण लगा तो उसमें से कौन से हिस्से महत्वपूर्ण लगे, क्या आपने उसमें से कुछ नोट किया, क्या आपने उसमें कुछ सीखा, ये सब थोड़ा सा मूल्यांकन कीजिए। दरअसल उस आर्टिकल को उपलब्ध कराने के पीछे मेरा एक मकसद था। देखिए, खासकर जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उन पर तो हम आर्टिकल्स पढ़ते ही रहते हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे जाते हैं, हो सकता है इस पर भी लिखा जाए, आई डोंट नो। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे समाज, सभ्यता, संस्कृति इन सब से जुड़े हुए होते हैं, वो बड़े जनरल किस्म के होते हैं। तो सवाल यह है कि अब आपको ये आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। दोस्तों, एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि न पूछा जाए, लेकिन इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वह यह कि एक समाज या सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानने को नहीं मिलता है, हम बहुत ज़्यादा उसके लिए पॉइंट्स नहीं ढूंढ पाते हैं, उसके लिए कैसे पॉइंट्स निकाला जाए। एक ऑब्स्ट्रिक्ट विषय है ना, एक अदृश्य सा विषय जो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है लेकिन उस पर बात की जा सकती है, बहुत गंभीरता और विद्वत्तापूर्ण बात की जा सकती है, वह आपको उस आर्टिकल में मिलेगा। खासकर उसको जो बेस बनाया गया है उस आर्टिकल का, वो है हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अभी जो नए बनाए गए हैं मनसुख मांडविया जी। उनका कोई एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, नेशन ऑफ फादर, फादर ऑफ नेशन होता है, नेशन ऑफ फादर। तो ये जो अंग्रेजी नेशन ऑफ फादर, इसको लेकर के फिर ट्रोल किया गया, जो आपके सोशल मीडिया का जो कमाल होता है आप जानते ही हैं, उसमें ट्रोल करना शुरू कर दिया अंग्रेजी को लेकर के, कि ये क्या अंग्रेजी है, कैसी अंग्रेजी है, इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती। आपको सोचना है कि क्या सच में ऐसा किया जाना चाहिए। अगर नेशन ऑफ फादर लिखा भी गया, जो मेरी अगर मेरी राय पूछे तो ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, लिखने में गड़बड़ी भी हो सकती है, उसमें क्या बात है। और ठीक है, वो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा न जानना कोई अयोग्यता का प्रमाण तो नहीं है, जानना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन नहीं जानना कोई बुरी बात तो नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस इशू को एनालाइज किया है, तो मुझे लगा कि आज इसके बारे में अपनी बात आप सब तक पहुंचानी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आज आपने अखबार पढ़ा हो तो इसमें एक छोटी सी खबर है, ये इंटरेस्टिंग है, कोई सिविल सर्विस की प्रिपरेशन से इसका संबंध नहीं है, कि जो तालिबान है अफगानिस्तान में वो तेजी से घुसते चले जा रहे हैं और जबरदस्त किस्म का सरकार की सेना और तालिबानियों के बीच में संघर्ष छिड़ा हुआ है। फिर आपने एक जगह पढ़ा होगा कि वहां का जो एक ऐतिहासिक शहर है जिसका नाम है गजनी, गजनी वहां भी बस अब वो घुसने वाले हैं, वहां तक वो पहुंच गए हैं गजनी। जब आप गजनी शहर का नाम सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में कुछ क्लिक करता है, इतिहास का कोई अध्याय खुलता है? डेफिनेटली खुल गया होगा, मोहम्मद गजनी। देखिए, कभी कभी मोहम्मद गजनी को मैंने इतिहास की किताबों में देखा है कि गजनवी भी लिख दिया जाता है, वो भी ठीक है, गजनी सीधे सीधे आप कह सकते हैं, गजनवी भी कह सकते हैं, जैसे लखनऊ लखनवी कह देते हैं हम, है ना, लेकिन मुरादाबाद को मुरादाबादी भी कह देते हैं, ठीक है, अब वो उर्दू का शब्द है। तो मोहम्मद गजनी, तो आप देखिए कि कैसे स्थान के नाम को उन्होंने अपने सरनेम या जो भी कह लीजिए उसमें तब्दील कर लिया था। और इस तरह की बातें जब आप इतिहास के साथ जोड़ करके जानते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इतिहास बड़ा मजेदार बन जाता है। और अगर मेरे जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने इतिहास के लेक्चर सुने हों तो आप पाएंगे कि लगभग हर लेक्चर के साथ मैंने ये बताने की कोशिश की है, ताकि उस पूरे के पूरे लेक्चर में आपको एक विंडो खुलती हुई दिखाई दे, है ना, जहां से आपको रोचकता की हवा, रोचकता की रोशनी मिल सके और इतिहास को आप एंजॉय कर सकें, और संभव हो सके तो उस अतीत में जाकर के थोड़ी देर के लिए रह भी सके, उसे जी भी सके। तो दोस्तों, बस इतिहास को कैसे आप रोचक बना सकते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने इस घटना की चर्चा की है। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है जनसंख्या। आपके सिलेबस में देखिए बकायदे जनसंख्या का टॉपिक दिया हुआ है। ये बात अलग है कि मैंने पाया है कि जनसंख्या को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, जो डिविडेंड कहते हैं ना, जिसको फायदा क्या मिल रहा है हमको, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उस पर एक आध साल जरूर प्रश्न पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पा रही है। अनुमानित आंकड़े जरूर आए हैं, कल परसों के अखबारों में काफ़ी दिए हुए भी हैं, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर काफ़ी बताया गया है, उसमें विश्व के परिदृश्य के संदर्भ में भारत की चर्चा की गई है। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1-1.5 साल के लिए अब यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया, एक सेशन के लिए आप कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट हो गया है। दूसरी बात है, कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति लेकर के आने वाले हैं, उन्होंने उसका ड्राफ्ट अभी दे दिया है, देखते हैं फाइनल क्या होता है। तो यह भी महत्वपूर्ण हो गया। यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए हमारे पूरे के पूरे देश में यूपी और बिहार में जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है, और अगर यूपी बिहार में जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि केवल उसके जो नुकसान होंगे उन्हीं राज्य को उठाना पड़ेगा, पूरे के पूरे देश की बात होती है। तो इसीलिए यूपी ने अगर ये लागू किया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आगे चल करके दूसरे राज्य भी इसे फॉलो करें। अदरवाइज आप पाएंगे कि बहुत से राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सीधे जनसंख्या नीति की तो घोषणा नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी हैं कि जिनके कम बच्चे होंगे उनको ये लाभ मिलेगा और जिनके अधिक बच्चे होंगे उनको ये नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर याद कीजिए कि लक्षद्वीप के बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो वहाँ जो अभी नए कुछ नियम लागू किए गए, कानून बनाए गए, उसमें एक है कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायत के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। कुछ राज्यों में और भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और उत्तर प्रदेश का जो ड्राफ्ट है आपको चाहिए कि आप एक बार उसे पढ़ें। अभी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब फाइनल हो जाएगा तब आप पढ़िएगा। तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि जिनके कम बच्चे होंगे उन्हें क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी में हों या सरकारी नौकरी में ना हों, और यदि उनके अधिक बच्चे हुए तो चाहे सरकारी नौकरी में होंगे तो उन्हें किस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, और अगर वो गैर सरकारी हैं तब भी उन्हें किस तरह के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए ये तो पक्की बात है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वो हमारे जितना भी हम विकास के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें निरस्त कर देती है। सामाजिक आर्थिक विकास उतना हम नहीं कर पाते। आप सोच करके देखिए कि अगर हम GDP की दृष्टि से देखें तो विश्व के 5वें-6वें नंबर पर हैं, लेकिन जब हम आय के बारे में देखते हैं तो प्रति व्यक्ति आय में हम 144वें नंबर पर चले जाते हैं और फिर मानव विकास सूचकांक में 129वें नंबर पर चले जाते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत आंकड़ा है, बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा आपको मालूम भी होना चाहिए। जब हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते थे तो हम कहते थे कि भारत की जो हिस्सेदारी है विश्व जनसंख्या में वो लगभग 16% के आसपास है, 15.8% होता था, अब वो हो गया 17.5%। लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो पृथ्वी है हमारी, उसका तो ज्यों कहते हैं 2.4। तो सोच करके देखिए कि पॉपुलेशन में हम हैं 17.5 और पृथ्वी, जिसे आप रिसोर्सेज कह सकते हैं, पृथ्वी पे ही सारे रिसोर्सेज, चाहे फिर आप पानी ले लीजिए, वन जंगल ले लीजिए, खनिज ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, 2.4 अंतर देखिए, 17.5 और 2.4, ये डेटा आपके दिमाग में मौजूद रहना चाहिए। दोस्तों जनसंख्या को लेकर के आज जो एडिटोरियल कमेंट्स और कुछ लेख आए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इन्हें देख लेंगे और अपने हिसाब से एक छोटा सा नोट जैसा तैयार कर लीजिएगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप सब देख लेंगे। दोस्तों ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं रवीना मिस्त्री, मयंक प्रताप हापुड़ उत्तर प्रदेश से, और नेहा सिंह भोजपुर बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।